उसकी बात सुनकर आकाश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस तिरछी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से कहा, अरे रुको वाइफी, तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हो, इसीलिए तो कभी कभी तुम्हारा डिसीजन सही होने के साथ साथ गलत भी हो जाता है। अब हमारी शादी को ही देख लो, तुमने इतनी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि ये सही है या गलत। जी, भूमि एकदम हैरानी से बोल पड़ती है, तो आकाश जल्दी से कहता है, अरे मेरा मतलब ये है कि शुरू शुरू में तो तुम्हें मैं गलत ही लग रहा था ना, मैंने तुमसे ये ज़रूर कहा है कि काम ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर मैंने तुमसे ये कब कहा कि हमारे डिनर का प्लान कैंसिल हो गया है। मैं बस तुम्हें लेने घर नहीं आ सकता हूँ, पर मैं गाड़ी भेज रहा हूँ ड्राइवर के साथ, वो तुम्हें लेकर रेस्टोरेंट पहुँच जाएगा, और मैं यहाँ से सीधे रेस्टोरेंट पहुँच रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वाइफी। भूमि के चेहरे पर मुस्कान जो फीकी हो गई थी वो फिर से आ जाती है और वो जल्दी से कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगी, आप आराम से अपना काम खत्म करके आ जाइए। ओके वाइफी, ये कहते हुए आकाश फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने अपने फ़ोन से नंबर डायल किया और ड्राइवर को फ़ोन करके उसे भूमि को लेने के लिए भेज दिया। आकाश की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, वो ख़त्म करके वो जल्दी से ऑफिस में रखा हुआ अपने एक्स्ट्रा कपड़े को चेंज करता है और ख़ुद गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर उसने भूमि को आने के लिए कहा था। आकाश ने जानबूझकर दूर के रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था जहां भूमि को पहुंचने में और ज़्यादा समय लगता। आकाश पहले से ही जाकर उस रेस्टोरेंट पर बैठ गया और भूमि के आने का इंतज़ार करने लगा। वैसे तो उसे इंतज़ार करना पसंद नहीं था, पर उसे पता था कि उसने क्या प्लानिंग कर रखी थी। उसे इंतज़ार करते हुए आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ और अब तो तीन घंटे हो गए थे। तीन घंटे से वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने ड्राइवर से ये कहा था कि भूमि को ख़राब रास्ते से यहाँ लेकर आए ताकि भूमि यहाँ लेट पहुँचे और रास्ता ख़राब होने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाए। तीन घंटे लेट पहुँचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसने जल्दी से ड्राइवर को फ़ोन लगाया पर ड्राइवर का फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। वो गुस्से में भूमि को फ़ोन लगाता है लेकिन भूमि का फ़ोन अरुणिमा ने उठाया। माँ, भूमि कहाँ है? मैं पिछले तीन घंटे से रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आकाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो अरुणिमा जल्दी से कहती है, तुम क्या कह रहे हो आकाश, भूमि तो तीन घंटे पहले ही ड्राइवर के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई है। मैं तो तुम्हें फ़ोन करने वाली थी कि तुम लोग वापस घर कब तक आओगे, और तुम कह रहे हो कि भूमि अब तक पहुँची नहीं है। अरुणिमा की बात सुनकर आकाश हैरान हो गया। अगर भूमि तीन घंटे पहले ही महल से निकल चुकी है तो फिर वो अभी तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं? उसने फिर से ड्राइवर को कॉल मिलाना चाहा, लेकिन उसका कॉल बार बार नॉट रीचेबल जा रहा था। आकाश को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी, उसका मन घबराने लगा। हालांकि वो बस भूमि को थोड़ा सा परेशान करना चाहता था, पर इस तरीके से तो भूमि ही उसे परेशान कर रही थी। आकाश और आस्तिक के पास जितनी भी गाड़ियां थीं सब में GPS ट्रैकर लगा हुआ था। आकाश ने जल्दी से अपनी टीम को उस गाड़ी की GPS को ट्रैक करके उसे पता लगाने के लिए कहा और खुद परेशानी में रेस्टोरेंट में ही बैठा रहा। उसने सोचा थोड़ी देर और इंतज़ार करके देख लेता हूँ, क्या पता भूमि आ ही जाए, हो सकता है वो रास्ते में कहीं फंस गई हो जिसकी वजह से उसे आने में देर लग रही हो। पर अगले 10 मिनट बाद ही उसे अपनी टीम से फ़ोन आता है। वो जल्दी से फ़ोन उठाकर कान पर लगाता है और कहता है, हाँ जल्दी बताओ कहाँ है वो गाड़ी जिसमें भूमि है? सर, आपने जिस गाड़ी को हमें ट्रैक करने के लिए कहा था हमने उस गाड़ी को ट्रैक किया है, लेकिन वो गाड़ी पिछले तीन घंटे से जंगल के इलाके में ही रुकी हुई है। उसका GPRS आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लोकेशन एक ही जगह का दिख रहा है, जंगल के पास, और वो जंगल सिंगल के बॉर्डर के बाहर है। आकाश ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है। भूमि जिस गाड़ी में आ रही थी उसका इस तरीके से सिंगल से बाहर होना हैरान कर देने वाला था, और साथ में आकाश को कुछ अनहोनी का भी अंदाज़ा हो गया था। वो जल्दी से रेस्टोरेंट से निकलता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। उसकी टीम आकाश के बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और आकाश जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर GPS लोकेशन बता रहा था। उसे भूमि की फिक्र हो रही थी, भूमि को खोने का डर उसके मन में आ गया था। न जाने क्यों उसके चेहरे पर पसीने उभर आए थे। महल के बाहर सारी मीडिया जमा हो रखी थी, पुलिस और सिक्योरिटी सबको काबू करने में लगे हुए थे, लेकिन भीड़ काबू से बाहर हो रही थी और महल के अंदर माहौल बहुत गर्म पड़ा हुआ था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी और पुलिस की टीम इस वक्त महल के अंदर मौजूद थी। आस्तिक इस समय अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा सख्त था और बाकी सारा परिवार परेशान होता हुआ एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था, पर सबके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अनंत खिड़की के पास था और किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसके चेहरे पर भी परेशानी थी। आकाश एक तरफ हाथ बांध कर खड़ा था लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी कम और गुस्सा ज्यादा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके हाथों की नसें तक दिख रही थी। बस वो खुद ही जानता है कि इस सिचुएशन पर उसने खुद को किस तरीके से काबू कर रखा था। अनंत अपनी बात खत्म करके आस्तिक के पास आता है और उसे देखकर कहता है, पापा, भाभी देहरादून वापस नहीं गई है, मैंने पता करवाया है उनके कॉलेज में, भाभी ने वहां आने की कोई बात कही ही नहीं है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जो ये बताए कि वो राजस्थान से बाहर गई है। तभी पुलिस कमिश्नर आस्तिक को देखते हुए कहते हैं, आप फ्रीक मत कीजिए राजा साहब, हम जल्दी से आपकी बहू को ढूंढ लेंगे।